आज है 30 अक्टूबर दिन शुक्रवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में। मैं हूँ सुशीला सिंह। बिहार में चौथे चरण के लिए थमेगा आज प्रचार। पार्टियों ने जेपी को खूब किया याद, लेकिन क्या कहते हैं वोटर?
जहाँ भी इलेक्शन है, इलेक्शन सब हम ये है, ये जब इलेक्शन खत्म है तो कोई कुछ नहीं, ये सब दिखावा है, ये सब ये लोग सब बिहेव कर, सब बकवास है, आपको कुछ होने वाला नहीं है, ये सब लोग अपने अपने सब ये वो कर रहे हैं, सारा बकवास है।
दाल के बढ़े दामों के बीच महाराष्ट्र में 68 मीट्रिक दाल जब्त।
अगर ये जल्दी से जल्दी वितरित ना करते तो ये खराब होने की संभावना है, तो हमारी डिमांड है कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्राइस फिक्स कर दे।
चलेंगे झारखंड के ऐसे गांव जहां मिलता है 5 रुपए में भरपेट दाल और भात। होगी वॉशिंगटन डायरी भी, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। बिहार विधानसभा चुनाव में चौथे दौर के मतदान के लिए प्रचार आज शाम थम जाएगा। चौथे चरण में 1 नवंबर को 55 सीटों पर वोटिंग होगी। इस चरण में 7 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सीवान में वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में कुल 776 उम्मीदवार मैदान में हैं, इनमें 57 महिला उम्मीदवार हैं। पॉल रॉयन अमरीकी प्रतिनिधि सभा के नए स्पीकर चुने गए हैं। वो पिछले महीने इस्तीफा देने वाले जॉन बैनर की जगह लेंगे। रॉयन रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता के मुताबिक अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उम्मीद जाहिर की है कि नए स्पीकर द्विदलीय भावना के साथ सदन चलाएंगे। अपने निर्वाचन के बाद रॉयन ने सदन को विभाजित बताया था। सीरिया संकट के समाधान के लिए आज वियना में बहुपक्षीय बातचीत होगी। इस बातचीत के पहले कल ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ और अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी के बीच मुलाकात हुई। ईरान पहली बार बातचीत में हिस्सा ले रहा है। इस बातचीत में रूस, सऊदी अरब और तुर्की भी हिस्सा ले रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने बातचीत में हिस्सा ले रहे देशों से लचीला रुख दिखाने को कहा है। उन्होंने कहा,
आई एम अर्जिंग ऑल दिस 5 कंट्रीज टू शो देयर
मैं इन सभी 5 देशों से आग्रह करता हूं कि वो अपने देश के रुख के बजाय वैश्विक नजरिया दिखाएं। जितने वक्त तक वो अपने नजरिए पर रहेंगे, लोगों को उतनी ज्यादा मुश्किलें झेलनी होगी। पूरी दुनिया को इसकी वजह से मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बान की मून के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इराक की राजधानी बगदाद के पास एक पुराने मिलिट्री बेस पर गुरुवार रात रॉकेट हमला हुआ है। जिस जगह पर हमला हुआ है वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास है। पहले ये अमरीकी सेना का ठिकाना था। हमले में कम से कम 15 मिसाइलें दागी गईं। ईरान के पीपुल्स मुजाहिदीन का कहना है कि हमले में उसके 20 से ज़्यादा सदस्य मारे गए हैं। ईरान का ये ग्रुप 1979 से निर्वासित है। अब तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। म्यांमार के शहर रंगून में मुख्य विपक्षी दल नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की रैली में हथियारबंद लोगों ने हमला किया। चाकुओं से किए गए इस हमले में एक सांसद को सिर और हाथों में चोट आई है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जिसके बाद अस्पताल के बाहर पार्टी समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। ये हमला ऐसे वक्त हुआ जबकि म्यांमार में हो रहे चुनाव में सिर्फ 10 दिन का वक्त बाकी रह गया है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। बिहार में चौथे चरण के लिए प्रचार आज थम जाएगा। चौथे चरण के लिए राज्य में 1 नवंबर को मतदान होना है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बाकी 2 चरणों को देखते हुए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर में आज रैली करेंगे, वहीं कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कटिहार और किशनगंज में रैलियां की थी। उधर महागठबंधन में शामिल लालू प्रसाद और नीतीश कुमार भी चुनावी प्रचार में ताकत लगाए हुए हैं। महागठबंधन ने जहां मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार स्पष्ट कर दिया है, वहीं नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में से एक नंद किशोर यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री पद के लिए किसी को आगे न करके उनकी पार्टी ने सही फैसला किया है और ये पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई जहर नहीं पिएगा। बीबीसी संवाददाता पंकज प्रियदर्शी ने नंदकिशोर यादव से मुलाकात की और सबसे पहले यही पूछा कि उनकी पार्टी पर नकारात्मक प्रचार के आरोप क्यों लग रहे हैं।
नहीं, नकारात्मक प्रचार तो हमारे विरोधी कर रहे हैं, मैं तो सकारात्मक बात कर रहा हूँ, मैं तो विकास की बात कर रहा हूँ। तो नकारात्मक राजनीति तो वो कर रहे हैं जो केवल आलोचना की बात कर रहे हैं, हम तो पूरे चुनाव को विकास के मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं। अब वो लोग कभी गोमांस की बात उठाते हैं, कभी कोई और बात उठाते रहते हैं।
नंदकिशोर जी, यहाँ पर आप एक गठबंधन से बाइपोलर मुकाबला है आपका, दो ध्रुवीय मुकाबला है यहाँ पे, और विपक्ष के पास एक मौका है ये कहने का कि बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है, जबकि आप हैं, खुद मंगल पांडे प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुशील मोदी हैं और भी कई, रामकृपाल यादव, बड़े बड़े नाम हैं, तो क्यों, क्या ये अच्छा नहीं होता कि एक आदमी का नाम रखा जाता?
नहीं, पार्टी का निर्णय बिल्कुल सही है, हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और ये हमारी रणनीति का पार्ट है। हम कई राज्यों में सरकार बनाया, हमने झारखंड में सरकार बनाया, हरियाणा में बनाया, महाराष्ट्र में बनाया, बिना नेता घोषित किए हमने सरकार बनाई है, और बिहार में मुझे लगता है कि पार्टी का निर्णय बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहाँ तो उन विरोधी पार्टी में नेता के चयन के लिए लोगों को जहर खाना पड़ा था, लेकिन यहाँ किसी के चयन के लिए, यहाँ मुख्यमंत्री का उम्मीदवार किसी को जब बनाया जाएगा तो मैं समझता हूँ किसी को भी जहर खाने की नौबत नहीं आएगी।
एक और जो इस चुनाव में मुद्दा ये आया है, बार बार वो कह रहे हैं कि मंडल राज पार्ट टू है, और उसके बाद आरक्षण पे मोहन भागवत जी का जो बयान आया उसको भी विपक्ष ने काफी भुनाया।
देखिए, बड़ा सवाल ये है कि लोग बिहार के चुनाव के मुद्दे से लोगों को भटकाना चाहते हैं। बिहार के चुनाव का प्रमुख मुद्दा है विकास, हम इस पूरे चुनाव को विकास के मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे विरोध में लोग खड़े हैं वो लोग विकास के मुद्दे से लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं। लोगों ने 15 साल राज किया है, कांग्रेस ने भी यहाँ 35 साल राज किया है, और इनके पूरे शासनकाल में जिस प्रकार विकास गौन रहा है, वो मुद्दे उछल न जाएं, लोग उनसे सवाल न करें, इसलिए बार बार ये लोग ऐसे मुद्दे उठाना चाहते हैं जिसका कोई आधार नहीं। आरक्षण के सवाल पे जब सब लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आरक्षण व्यवस्था की समर्थक है, लेकिन बार बार मैंने कहा मुद्दे से भटकाना लोग चाहते हैं।
लेकिन पार्टी को स्पष्टीकरण क्यों देना पड़ा?
इसलिए कि लोगों ने गलत इंटरप्रेट कर लिया लोग उनके बयान।
ये तो विपक्ष की रणनीति भी हो सकती है ना कि किन बयान को किस अर्थ में पेश किया जाए।
भाई, ये रणनीति नहीं, ये तो कुनीति है। तथ्यों को गलत ढंग से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए तो कुनीति हो सकती है, रणनीति नहीं हो सकती, ये अच्छी नीति नहीं। अच्छी नीति तो है कि उनको बताना चाहिए कि हम क्या करेंगे सरकार में आएंगे, तो हम जो थे तो क्या किया हमने, हम कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे।
जो नरेंद्र मोदी जी ने गोमांस के मुद्दे पर इतने दिनों तक चुप्पी साधी रही, उससे भी क्या, पहले ये कहा जा रहा था कि अल्पसंख्यकों का वोट बीजेपी के खाते में कुछ प्रतिशत ही सही, पूरी तरह तो नहीं जाता है, जाएगा, लेकिन इस बयान में जो चुप्पी में मुंह खोलने में देरी हुई उसका नुकसान हुआ है ऐसा कहा जा रहा है?
यानी कोई नुकसान नहीं हुआ है, और मैं मानता हूँ हर बात पर प्रधानमंत्री बयान देने की कोई आवश्यकता नहीं,
लेकिन इस पर पूरा देश चर्चा कर रहा था नंदकिशोर जी, ये कोई छोटा मुद्दा तो था नहीं।
देखिए, देश क्या चर्चा कर रहा था, चर्चा तो ये लोग कर रहे थे जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जो सूडो सकलेंज की बात करने वाले देश के अंदर लोग हैं वही इस बात की चर्चा कर रहे हैं, और ये केवल इसलिए कर रहे थे कि उनको मुद्दे भटकाने थे, वो हिंदू मुसलमान के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते थे, मुस्लिम वोटों के चक्कर में लोगों ने इस मुद्दे को उछालने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी जाति और संप्रदाय के आधार पर मुद्दे नहीं उछालना चाहती है, मैं बार बार कह रहा हूँ हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास ये हमारा संकल्प है, हम इसी मुद्दे पर बार बार आना चाहते हैं, लोग हमको हटाना चाहते हैं।
बयानबाजी की बात की जाए नंद किशोर जी, तो शुरुआत अच्छी हुई कि विकास के एजेंडे की बात हुई, लेकिन धीरे धीरे फिर मामला शैतान, ब्रह्म पिशाच और तमाम तरह की बातें शुरू हो गई, क्या आपको लगता नहीं है कि विकास का मुद्दा जो है वो पीछे छूट गया?
यही तो लोग चाह रहे हैं ना, मैंने बार बार कहा आपसे,
लेकिन ये दोनों कैंप के
मुद्दों का गौर, सारे मुद्दों पर गौर,
दोनों कैंप की ओर से बयानबाजी हुई,
आप सारे मुद्दों पर गौर करिए, कहाँ से शुरू होती है बात, बात जब भी शुरू होती है तो वहां से शुरू होती है जो हमारे विरोध में खड़े लोग।
लेकिन जवाब देना जरूरी है,
जवाब तो देना पड़ता है, बताना पड़ता है बात को,
लेकिन
अगर जवाब नहीं देंगे तो गलत करना पड़ेगी।
मोदी जी ने शैतान वर्ड का इस्तेमाल किया, इसको भी भुनाया जा रहा है?
नहीं, आप फिर गलत बात कर रहे हैं, मोदी जी ने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मोदी जी ने कहा है, खुद लालू जी ने कहा मेरे जवान पे शैतान आ गया, अगर इसको हम दोहरा देते तो हम शैतान कह दिया, ये कमाल की बात है, वो खुद कह रहे हैं कि मेरे ऊपर शैतान आ गया, हम तो उसी बात को दोहरा रहे हैं कि जब जवान पे शैतान आ सकता है और ऐसी बातें निकल सकती है, शरीर पे आ जाएगा तो क्या होगा, हम तो इतना ही कहा है।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष नंदकिशोर यादव से बात कर रहे थे पंकज प्रियदर्शी। वहीं राज्य में हो रहे चुनाव में जेपी खूब चर्चा में रहे और इस बार जेपी की विरासत पर दो प्रमुख गठबंधन ताल ठोक कर दावा कर रहे हैं। जेपी पर चल रही बयानबाजियों के बीच हमारे सहयोगी पंकज प्रियदर्शी पहुंचे जेपी के गांव सिताबद्यारा, जहां उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर इन राजनेताओं के इस दावे पर लोगों को कितना यकीन है। सुनिए उनकी ये विशेष रिपोर्ट।
छपरा से करीब 35 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा सिताबद्यारा जेपी की जन्मभूमि। राजनीति के इस दौर में एकाएक जेपी के विरासत का दावा करने वालों की बाढ़ सी आ गई है। रैलियों में पीएम गर्जना करते हैं कि कांग्रेस विरोध की राजनीति करने वाले आज कांग्रेस का दामन क्यों थाम रहे हैं।
जो लोग जय प्रकाश जी की जिंदगी के साथ खेल खेलने वालों के साथ चुनावी समझौता कर रहे हैं, कांग्रेस के पास सीटों का बंटवारा कर रहे हैं, मुझे बताइए ये जय प्रकाश नारायण की आत्मा को पीड़ा पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, ये जय प्रकाश नारायण के साथ धोखा है कि नहीं है।
तो नीतीश कुमार हूं या लालू प्रसाद यादव, जेपी का नाम लेते वे भी नहीं थकते। लेकिन सिताबद्यारा में एक अजीब सी खामोशी है। जनता को पता है कि जेपी एकाएक क्यों सुर्खियों में आ गए हैं, क्यों एकाएक राजनेता हर बयान में जेपी जेपी की रट लगाए रखे हुए हैं।
ऐसा बात अभी जहाँ पे इलेक्शन है, इलेक्शन लेकर सब गौर हम ये हैं, जब इलेक्शन खत्म है तो कोई कुछ नहीं, ये सब दिखावा है, ये सब ये लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं, सब बकवास है, यहाँ को कुछ होने वाला नहीं है, ये सब लोग अपने अपने सब ये वो कर रहे हैं, सारा बकवास है, हम लोग ही जानते हैं, सब ये इलेक्शन है इसलिए सब ये हम ये हैं, हम ऐसा बकवास है।
वो यहाँ पर कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, क्या जरूरत पड़ता है ना लाभ के लिए, वही आते हैं करके चले जाते हैं,
यहाँ पर आए थे बीजेपी के लगे इलेक्शन बहुत इसीलिए आए।
दरअसल भूगोल का एक रोचक उदाहरण इस इलाके में देखने को मिलता है। सिताबद्यारा का एक हिस्सा उत्तर प्रदेश में है तो दूसरा बिहार में। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश वाले हिस्से को चमका दिया था। जेपी के नाम पर यहाँ कई संस्थान, शोध संस्थान और संग्रहालय हैं। तो दूसरी ओर बिहार वाले सिताबद्यारा में हालात उतने बेहतर नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि इस इलाके में काम नहीं हुआ है, देश के जाने माने राजनेताओं ने इलाके का कई बार दौरा भी किया है, लेकिन एक कमी आपको स्पष्ट रूप में दिख जाती है। जब मैं बिहार वाले सिताबद्यारा में जेपी की जन्मभूमि पर पहुंचा तो जेपी के परिवार की एकमात्र सदस्य फुन्नी देवी मुझे वहां मिली। वे जेपी के चचेरे भाई की पत्नी हैं, लेकिन उन्होंने जेपी के जन्म स्थान को संभाल कर रखने की कोशिश की है और वहाँ एक संग्रहालय भी है, लेकिन घर की जर्जर अवस्था आपको थोड़ा बेचैन करती है।
नहीं ध्यान दिया लोग, ध्यान नहीं था, आज जन्मभूमि तो यही है, जन्मस्थली यही है, लेकिन चंद्रशेखर कुछ उधर में गड़बड़ हो गया इसीलिए उधर में लोग कर लिया लोग। जगह हम लोग का जैसे आगे है घर बहुत बड़ा था, ढाही में जैसे गंगा जी को ढाही गई तो जगह है, जो गंगा सरजू सब तीनों नदी के बीच में है सोनून के।
एक बुजुर्ग महिला का जेपी की विरासत संभाल रखने का द्वंद भी खुल कर सामने आ गया।
और राजनीति पर नजर क्या है, हम हाँ है तब हमसे कुछ होता नहीं है, लेकिन हम इसीलिए हमको जन्म भूमि है मेरा है, इसीलिए मैं अगुर के यहाँ पर रहती हूँ, बेटा रहना नहीं देता है क्योंकि अब हमसे नहीं खाना पीना बनता है, नहीं कोई है कुछ है, अकेले रहना ठीक नहीं है।
बहुत पहले जेपी ने कहा था हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा। जेपी के इसी खास रूप को याद किया कुछ दिनों के लिए उनके सेवक रहे श्रीराम मल्लाह ने।
पटना में न्यूज सेक्रेटरी में वहाँ के अफसर अथी कर रही पुराना सचिव लेकर धारा दे रही कदम कुआं से आकर के लेकर लेकर आए गाड़ी से हमारा धारा दे रही।
तो कितना दिन रोवा रहने उनका साथ
कुछ दिन बनी ढेर दिन की साल दो साल ना।
जेपी ने पुराने सचिवालय के पास धरना दिया था, मैं उनके साथ कुछ दिन ही रहा हूँ। कुछ लड़के ग्रुप में आए और कहा कि हम लोगों को सेक्रेटेरिएट में आग लगा देनी चाहिए, लेकिन जेपी ने उन्हें खूब डांट लगाई और कहा कि वो किसकी संपत्ति है। तब लड़कों ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, वो तो हमारी ही संपत्ति है। फिर सभी लड़के चुपचाप बैठ गए।
लेकिन आज जेपी की विरासत का दावा करने वालों में प्रतिक्रियावादी राजनीति कूट कूट कर भरी है। कोई किसी को शैतान कह रहा है तो कोई ये कह रहा है कि ये चुनाव अग्रों और पिछड़ों की लड़ाई है। जेपी रहे तब भी संघर्ष करते रहे, आज उनके सिद्धांतों की राह भी इतनी आसान नहीं। पंकज प्रियदर्शी, बीबीसी, सिताब दियारा।
दाल की कीमतों को लेकर देश भर में चर्चा तेज है, लोग खासे नाराज हैं। इस बीच महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने बीते कुछ दिनों में कुल 68 मीट्रिक टन अरहर की दाल अलग अलग शहरों के जमाखोर व्यापारियों से जब्त की है। महाराष्ट्र में एक गैर सरकारी संगठन मुंबई ग्राहक पंचायत ने राज्य सरकार से मांग की है कि जब्त की गई अरहर दाल को जल्द से जल्द बाजार लाया जाए, लेकिन सरकार ने इसमें कानूनी दावपेच का हवाला देकर असमर्थता जताई है। क्या है ये पूरा मामला, यही समझने के लिए हमारे सहयोगी अश्विन अघोर ने बात की मुंबई ग्राहक पंचायत की चीफ कैंपेनर वर्षा राउत से।
1975 में महाराष्ट्र एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट की थी। उसके मुताबिक था कि जब ये सीजर किया हुआ स्टॉक होता है तो वो स्टॉक की कुछ कीमत गवर्नमेंट फिक्स करे, और वो फिक्स करने के बाद मतलब हमारे राशन के जो दुकान है वहां से डिस्ट्रीब्यूट की जाए। तो अब इतनी सारी, देखिए करीबन भारत में 80,000 टन और मुंबई महाराष्ट्र की फिगर आई है करीबन 68,000 टन, इतनी आज दाल जब्त की हुई है जो गोदामों में है अभी। अगर ये जल्दी से जल्दी वितरित ना करते तो ये खराब होने की संभावना है। तो हमारी डिमांड है कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्राइस फिक्स कर दे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट कह रही है जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की दूसरी प्रोविजन है जो कहती है कि सीजर किया जाए, फिर उनको नोटिस दी जाए, फिर अपील में जाए, फिर कॉन्फिस्केट करे और फिर उसका ऑक्शन करे। इसमें पहले तो उन्होंने कहा था 2 महीने जाएंगे, अब जैसे कि ग्राहक पंचायत प्रेशर डाल रही है उनके ऊपर तो वो आ गए 21 दिन तक। अब हमने जाके उनसे मांग की कि ये प्रोविजन है, ये अमेंडमेंट महाराष्ट्र स्टेट ने की हुई है तो वो आप क्यों नहीं लागू करते। तो अभी तक वो डिसीजन नहीं ले रहे, कह रहे हैं कि ये पीडीएस है और पीडीएस में अगर हम अभी देंगे तो थोड़े महीनों के बाद, दिनों के बाद हम क्या करेंगे। हमारा उनके ऊपर ऐसा कहना है कि आज लोगों को दाल चावल खाने के लिए दाल नहीं मिल रही, तो ऐसे वक्त ये जो सीज की हुई है जो खराब हो जाएगी वो आज इमीडिएटली आप सबको दे प्राइस फिक्स करके।
मतलब ये जो 1975 में जो अमेंडमेंट हुई है उसके मुताबिक ये मसला जो है ये पूरा हल हो सकता है और ये दाल सरकारी गोदामों में सड़ने से पहले ग्राहकों तक पहुंच सकती है।
परफेक्टली, पब्लिक के लिए इसकी नीड है जल्द से जल्द होने की। इसमें क्लियर कट प्रोविजन है और तो भी ये प्रोविजन का ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना चाहते, ये बहुत दुख की बात है।
मुंबई ग्राहक पंचायत की चीफ कैंपेनर वर्षा राउत से बात कर रहे थे अश्विन अघोर। उधर झारखंड में अगर आपकी जेब में 5 रुपए हैं तो आप यहां भरपेट दाल भात खा सकते हैं। आलू, सोयाबीन या चने की सब्जी बोनस में है। यह संभव हो पा रहा है मुख्यमंत्री दाल भात योजना के कारण। इसके तहत यहां गरीबों को एक समय का भोजन कराया जा रहा है। ध्यान देने की बात यह है कि इसमें दाल भी शामिल है। रांची से रवि प्रकाश की ये रिपोर्ट।
दाल रोटी खाओ प्रभु के गुनगाओ, झारखंड बिहार के गांवों में यह मुहावरा काफ़ी लोकप्रिय है। दाल की कीमतें बढ़ीं तो लगा कि इस मुहावरे की सार्थकता पर संकट आ जाएगा क्योंकि गरीबों को दाल मिल ही नहीं पाएगी। लेकिन झारखंड में यह मुहावरा अपनी ठसक के साथ मौजूद है। यहां संचालित मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत झारखंड के 24 जिलों में 400 दाल भात केंद्र चलाए जा रहे हैं। यहाँ 5 रुपये में 1 प्लेट भोजन मिलता है। इसमें 200 ग्राम दाल भात सब्जी दी जाती है। इसमें दाल देना अनिवार्य है क्योंकि दाल इस योजना के नाम के साथ जुड़ा है। जिम्मेवार अधिकारी बताते हैं कि सरकार इन्हें 1 रुपये प्रति किलो चावल उपलब्ध कराती है। इसके साथ सोयाबीन और चना मुफ्त दिया जाता है। करीब 12 लाख लोग रोजाना इन केंद्रों पर दाल भात खा रहे हैं। रांची के AG मोड़ पर दाल भात केंद्र चलाने वाली पिंकी अरोड़ा बताती हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने CM रहते हुए साल 2011 में इसकी शुरुआत कराई थी। पिंकी ने बताया,
लोगों का महिला मंगल संयुक्त समिति का सोसाइटी चलता है जो कि 2011 से मुख्यमंत्री दाल योजना मिला है और इसके अंतर्गत हम लोग 300-350 आदमी खा लेता है। हमारा AG मोड में सेंटर चलता है और इसमें दाल जब महंगा हुआ उससे हम लोग प्रभाव तो बहुत पड़ा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने दाल खिलाना बंद नहीं किया। दाल लाए, सब खाते हैं अभी भी 300-350 लोग हमारे सेंटर में खाते हैं प्रतिदिन। और कभी बढ़ भी जाता है, कभी कम भी हो जाता है, लेकिन 350-350 लोग खाते हैं।
ये जो अरहर की दाल को लेकर हंगामा है देश में, तो आप क्या कौन सा दाल खिला रहे
हैं? हम तो मसूर दाल खिलाते ही, टारिन मसूर आता है वो मसूर दाल ही खिलाते हैं, और अरहर दाल हम लोग नहीं खिलाते हैं। पेपर में दिया है कि मुख्यमंत्री लोग जो नया भी बजट होगा उसमें रात्रि में भी ये योजना चलेगा, देखते हैं क्या होता है आगे। अगर रात्रि में चलेगा तो ठीक है, हम लोग फिर रात्रि में वाला भी योजना चलाएंगे।
एजी मोड़ वाले केंद्र पर हमारी मुलाकात हुई गोस्टर्न कॉलेज के छात्र गोकुल कुमार से। उन्होंने बताया कि यह रोज वहीं पर लंच करते हैं, इससे उनके पैसे बच जाते हैं। कैसी है दाल? इसके जवाब में गोकुल कहते हैं कम से कम काली तो नहीं। गोकुल बताते हैं कि
मुझे यहाँ के दोपहर के खाना खाकर सेटिस्फेक्शन होता है, प्लस मेरा इकोनॉमी सेव भी होता है, ताकि मुझे 5 रुपये में खाना एक टाइम एक वक्त का मिलता है। बाकी ऐसे मैं मेस से खाता हूँ तो वो 1900 में मेरे को 2 ही टाइम्स मिल पाते हैं।
इन दिनों देश में खाने पीने की चीज़ों को लेकर खूब सियासत हो रही है, कभी बीफ कभी प्याज तो कभी दाल, लेकिन झारखंड में गरीबों को भात के साथ दाल खिलाने का प्रबंध हो चुका है। आम शहरी भले ही 145 रुपये किलो अरहर की दाल खरीद रहे हों, लेकिन इन केंद्रों पर पहुंचने वाले लोगों को 5 रुपये में दाल भात मिल रहा है। बहरहाल दाल को लेकर यहां कोई सियासत नहीं है, यह जरूर है कि 5 रुपये में मिलने वाली दाल पतली और मसूर की है। रवि प्रकाश, BBC रांची।
तो जहां दालों के दाम को लेकर लोग परेशान हैं, वहीं 5 रुपये में झारखंड में मिल रहा है दाल और भात। और अब समय है ब्रजेश उपाध्याय की वॉशिंगटन डायरी का।
सुना है अमरीकी इस बार एक दूसरे को डरने डराने पर $7 अरब खर्च करेंगे। हैलोवीन का मौसम है, मुखौटे और कालिख पोत कर पार्टियों में जाने का मौसम, घरों के बाहर डरावनी तस्वीरें लगाने का मौसम, कम कपड़ों में चुड़ैल का मेकअप लगाकर सेक्सी दिखने का मौसम, और हाँ, बच्चों के लिए कैंडी और चॉकलेट जमा करने का मौसम। बड़ा मुल्क है, राजा मुल्क है, उधार लिए पैसों से ही सही, दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है, उसकी जो मर्जी हो वो करे। लेकिन जो बात मेरी समझ में नहीं आ रही वो ये कि अमरीकियों को तो 24 घंटे और 365 दिन डरा रहना चाहिए, और बहुत सारे डरे हुए हैं भी, फिर एक दिन का ये तमाशा क्यों? अब रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की रेस में सबसे आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप हर गली मोहल्ले चौराहे पर चीख चीख कर कह रहे हैं कि वो अगर राष्ट्रपति बन गए तो इस देश में 1 करोड़ के लगभग गैरकानूनी तरीके से रह रहे लोगों को एक झटके में बाहर निकाल देंगे। बरसों से यहाँ रह रहे इन लोगों पर क्या बीतेगी वो तो एक अलग कहानी होगी। अमरीका पर क्या गुजरेगी ये सोचकर ही सैम चाचा के सपूतों की घिग्गी बंध जानी चाहिए। खेतों में काम करने वाले नहीं होंगे, दुकानों में सामान ढोने वाले नहीं होंगे, नलका और बिजली ठीक करने वाले नहीं होंगे, रेस्तरां में खाना बनाने और परोसने वाले नहीं होंगे, घरों की मरम्मत करने वाले नहीं होंगे। ये डरने के लिए काफ़ी नहीं है तो ट्रंप साहब ये भी कह रहे हैं कि उनके राज में दफ्तर हो या दुकान, देश में कोई कोना नहीं होगा जहां बंदूक ले जाने की आज़ादी नहीं होगी। यानी बॉस पर गुस्सा आए तब बंदूक निकालो, बार में गुस्सा आए तब बंदूक निकालो, पुलिस पर गुस्सा आए तब बंदूक निकालो, जब जी चाहे तब बंदूक निकालो। और अगर ट्रंप साहब की बातें काफ़ी नहीं हैं तो दूसरे उम्मीदवार भी हैं। कोई इस्लाम के खिलाफ जंग छेड़ने की बात कर रहा है तो कोई समलैंगिकों के खिलाफ, किसी को दोबारा से इराक में अमरीकी फौज चाहिए तो कोई रूस को सबक सिखाने को कह रहा है। 24 घंटे फ़ोन सुने जाने का डर, ईमेल पढ़े जाने का डर, दवा कंपनियों की तरफ से अचानक से कीमत में 500 गुना बढ़ोतरी का डर, बैंकों के दिवालिया हो जाने का डर, बच्चों के किम कारदाशियां और माइली साइरस के बहकावे में आने का डर, काले समुदाय का डर, मुसलमानों का डर, चीनियों का डर, फेसबुक के डिसलाइक बटन का डर, और इन सब के बावजूद हैलोवीन। वैसे इस मौके पर ट्रंप साहब के मुखौटे भी धड़ाधड़ बिक रहे हैं, और आपको लगेगा कि चलो लोगों को इतनी समझ तो है कि ये डरावनी बातें कहने वाला चेहरा है तो शायद उसे वोट नहीं देंगे। जनाब, ये अमरीका है, बड़े लोगों की बड़ी बात होती है। यहाँ मुखौटे की बिक्री उस शख्स की लोकप्रियता से भी आंकी जाती है। हैलोवीन कॉस्ट्यूम बेचने वाली वेबसाइट स्पिरिट हैलोवीन की माने तो 1996 के बाद से हर चुनाव में जिस उम्मीदवार के मुखौटे सबसे ज्यादा बिके हैं उसी को व्हाइट हाउस की चाबी मिली है। तो 1996 में जिन मुखौटों की सबसे ज्यादा बिक्री हुई उनमें 71% बिल क्लिंटन के थे, साल 2000 में बुश साहब के मुखौटे 57% पर रहे, और इराक की जंग के बाद 2004 के चुनाव में 65% मुखौटे उन्हीं के बिके। ओबामा जी के मुखौटों की बिक्री 2008 और 2012 दोनों ही में 60% रही। वैसे सुना है इन दिनों भारत और पाकिस्तान में भी आप लोग हैलोवीन मनाने लगे हैं, बढ़िया है। मुखौटा किसका लगाना चाहिए ये यहाँ से बैठकर मैं क्या बताऊँ, आप तो खुद ही समझदार हैं, सोच समझ कर लगाइएगा। ब्रजेश उपाध्याय, BBC वॉशिंगटन।
तो आपको ब्रजेश उपाध्याय की डायरी कैसी लगी हमें ज़रूर लिखेगा। और अब समय है समाचार पत्रों की समीक्षा का। वात्सल्य मुस्कुरा रहे हैं मेरे सामने समाचार पत्रों के साथ। जी वात्सल्य
जी। सुशीला जी, आज अखबारों ने जिन खबरों को प्रमुखता से जगह दी है उसमें भारत अफ्रीका फोरम समिट, लश्कर के चरमपंथी अबू कासिम के एनकाउंटर में मौत और यूपी के 8 मंत्रियों की बर्खास्तगी और साथ में क्रिकेटर हरभजन सिंह की शादी, जो कल शादी उन्होंने की है, इनकी खबरें छाई हुई हैं पहले पन्ने पर। भारत अफ्रीका फोरम समिट जो कल ही ख़त्म हुई है उसकी खबरों में हिंदू ने इसे लीड खबर बनाया है। अखबार ने हेडिंग दिया है इंडिया अफ्रीका टू ब्राइट स्पॉट्स ऑफ होप। ये दरअसल समिट में पीएम नरेंद्र मोदी का बयान था, इसी को हेडलाइन अखबार ने बनाया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने एक तस्वीर लगाई है जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं और झुककर उनके कान में कुछ कहते हुए दिख रहे हैं। इससे ये करीबी दिखाने की कोशिश की गई है भारत और अफ्रीका के नेताओं के बीच में जो आई है समिट से। हिंदुस्तान टाइम्स ने समिट की वजह से जो जाम कल दिल्ली की सड़कों पर लगा उससे लोगों को जो परेशानी हुई उसकी खबरें भी छापी है और इसमें बताया गया है कि पूरी दिल्ली में 3 घंटे तक जाम में एक गर्भवती महिला फंसी रही और बाद में ऑटो में ही उसने बच्चे को जन्म दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि बच्चा ठीक है लेकिन माँ की स्थिति थोड़ी गंभीर है।
और इस जाम में हम दोनों भी फंसे थे ऑफिस से जाते वक्त। जी,
लेकिन ये शाम की बात है जब ये लोग जाम में फंसे थे। और बिहार चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह का एक बयान है, उसे भी अखबारों ने प्रमुखता से जगह दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे अपनी लीड खबर बनाया है। अमर उजाला ने इस खबर का हेडिंग दिया है, भाजपा हारी तो पाक में फूटेंगे पटाखे। ये दरअसल अमित शाह का एक रैली में बयान था। और पुरस्कार लौटाने को लेकर जो विवाद चल रहा है उसकी खबरें भी प्रमुखता से पहले पन्ने पर बनी हुई है। दरअसल कल वैज्ञानिक पुष्पमित्र भार्गव ने पद्म भूषण पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया था। अमर उजाला ने इससे जुड़ी खबर को लीड खबर बनाया है। इसमें सरकार का पक्ष बताते हुए हेडिंग दिया गया है, पुरस्कार लौटाने पर अब सरकार ने खोला मोर्चा। हिंदुस्तान ने भी इसे लीड खबर बनाया है। दैनिक जागरण ने यूपी सरकार के 8 मंत्रियों की बर्खास्तगी की खबर को लीड बनाया है। दैनिक भास्कर ने अपनी लीड स्पेस में हरभजन सिंह की शादी की तस्वीर को लगाया है जिसमें सचिन तेंदुलकर भी नजर आ रहे हैं।
जी, समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वात्सल्य आपका। और अब सुन लेते हैं खेल समाचार।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। खेल की खबरों में सबसे पहले चलते हैं टेनिस की तरफ। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की टॉप सीड जोड़ी ने WTA फाइनल्स में महिला डबल्स के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। भारतीय स्विस जोड़ी ने दूसरे दौर में आंट्रिया लावाकोवा और लूसी राधिका की चेक रिपब्लिकन जोड़ी को सीधे सेटों में मात दी। दोनों ने 1 घंटे 17 मिनट तक चले इस मुकाबले में 6-3, 6-4 से जीत दर्ज की। $70,00,000 की इनामी प्रतियोगिता में सानिया मार्टिना की जोड़ी ने इससे पहले सोमवार को पहले ग्रुप मैच में रॉकविल कोप्स और एबिगेल स्पियर्स की 6वीं वरीयता प्राप्त अमेरिकी जोड़ी को हराया था। WTA फाइनल सालाना टूर्नामेंट है जिसमें टॉप 8 जोड़ी और 8 सिंगल्स खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। इसमें 2 राउंड रॉबिन ग्रुप रेड और व्हाइट में बांटे जाते हैं। प्रत्येक ग्रुप से 2 जोड़ियां सेमीफाइनल में जगह बनाती हैं। और अब खबर फुटबॉल से। फीफा के निलंबित अध्यक्ष सेप ब्लैटर ने 2018 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी पर एक बड़ा खुलासा कर सभी को चौंका दिया है। ब्लैटर के मुताबिक 2018 विश्व कप की मेजबानी को लेकर मतदान होने से पहले ही रूस को मेजबानी देने पर सहमति बन गई थी।
ग्रुप के अंदर 2010 में ही ये तय हो चुका था कि 2018 की मेजबानी रूस को सौंपी जानी है और 2022 की मेजबानी अमेरिका को, लेकिन मिशेल प्लातिनी के अंतिम समय में 2022 विश्व कप के लिए कतर का पक्ष लेने के कारण अमेरिका इससे वंचित हो गया। मतदान के पहले समूह के अंदर यह सहमति बन गई थी कि हम रूस का समर्थन करेंगे क्योंकि पहले कभी पूर्वी यूरोप को मेजबानी नहीं मिली थी और 2022 के लिए हम अमेरिका का समर्थन करेंगे। यूरोप के 4 वोटों के आखिरी वक्त में पाला बदलने से अमेरिका की जगह कतर को मेजबानी मिल गई।
विश्व कप 2018 और 2022 की बिडिंग प्रक्रिया को लेकर स्विट्जरलैंड के अधिकारी जांच में जुटे हैं। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
खेल समाचार सुना रही थी राखी शर्मा। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव में 4th दौर के मतदान के लिए प्रचार आज शाम थम जाएगा। पॉल रायन अमरीकी प्रतिनिधि सभा के नए स्पीकर चुने गए हैं। वो पिछले महीने इस्तीफा देने वाले जॉन बैनर की जगह लेंगे। सीरिया संकट के समाधान के लिए आज वियना में बहुपक्षीय बातचीत होगी। इस बातचीत के पहले कल ईरान के विदेश मंत्री और अमरीकी विदेश मंत्री के बीच मुलाकात हुई। इराक की राजधानी बगदाद के पास एक पुराने मिलिट्री बेस पर गुरुवार रात रॉकेट से हमला हुआ है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे वात्सल्य राय। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। आपसे 8 बजे विश्व भारती में फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।